नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। बेहतर वेतन, जन सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के वादे के साथ देश में नई श्रम संहिताएं लागू। राज्य सरकार ने 15 वर्ष पुराने कॉमर्शियल वाहनों के फिटनेस शुल्क बढ़ोतरी को एक वर्ष के लिए स्थगित किया। राज्य के विभिन्न हिस्सों में मानव भालू संघर्ष की घटनाएं बढ़ने पर सरकार सतर्क। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भालू के हमलों पर तत्काल कार्रवाई के दिए निर्देश। और देहरादून में आयोजित प्रशासनिक अधिकारी सम्मेलन 2025 के दूसरे दिन अल्मोड़ा, पौड़ी, नैनीताल, देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी के जिलाधिकारियों ने अपने जिलों की बेहतर पहलों पर प्रस्तुतिकरण दिए। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशुतोष उनियाल। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने देश में दशकों पुराने मौजूदा श्रम कानूनों को सरल और कारगर बनाने के उद्देश्य से 4 नई श्रम संहिताओं को आज से लागू करने की घोषणा की। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नई श्रम संहिताएं देश के कार्यबल के लिए बेहतर वेतन, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करेंगे। वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्यदशा संहिता 2020 शुक्रवार से लागू हो गई है। एक रिपोर्ट।
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने पिछले एक दशक में सामाजिक सुरक्षा कवरेज का व्यापक विस्तार किया है, जो 2015 में कार्यबल के लगभग 19% से बढ़कर 2025 में 64% से अधिक हो गया है। मंत्रालय ने बताया कि 4 श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सामाजिक सुरक्षा के दायरे को और व्यापक बनाएगा, साथ ही राज्यों और क्षेत्रों में इससे होने वाले लाभ को भी अंतर्निहित करेगा। नए श्रम संहिता सुधारों में सभी श्रमिकों के लिए समय पर न्यूनतम मजदूरी, युवाओं के लिए नियुक्ति पत्र, महिलाओं के लिए समान वेतन और सम्मान प्रदान करेगा। इसके अलावा ये सुधार 40 करोड़ श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और एक वर्ष के रोजगार के बाद निश्चित अवधि के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की गारंटी भी प्रदान करेगा। ये सुधार 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच, ओवरटाइम के लिए दोगुना वेतन, जोखिम भरे क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उनके लिए सामाजिक न्याय की गारंटी भी सुनिश्चित करेगा।
राज्य सरकार ने 15 वर्ष पुराने कॉमर्शियल वाहनों की फिटनेस शुल्क बढ़ोतरी को एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है। अब 21 नवंबर 2026 तक पुरानी फीस ही लागू रहेगी। राज्य सरकार के इस निर्णय से वाहन स्वामियों और परिवहन कारोबार से जुड़े लोगों को बढ़ी हुई शुल्क का तुरंत बोझ नहीं झेलना पड़ेगा। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में 15 वर्ष पुराने कॉमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में काफी बढ़ोतरी की थी, लेकिन राज्य सरकार ने जन भावनाओं को देखते हुए इस बढ़ोतरी को तत्काल लागू न करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ बढ़ाना नहीं चाहती है और भविष्य में नई फीस दरें केंद्र द्वारा किए जाने वाले पुनरीक्षण के बाद ही लागू होंगी। अल्मोड़ा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा ने राष्ट्रीय एकता कार्यक्रम के तहत एकता रैली निकाली। रैली नंदा देवी मंदिर परिसर से शुरू होकर मुख्य बाजार होते हुए शहीद तिराहा और मॉल रोड तक पहुंची। कार्यक्रम में अल्मोड़ा के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, भाजपा प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष बलवीर गुनिया, भाजपा प्रदेश मंत्री गौरव पांडे और विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि देश की स्वतंत्रता और एकता को मजबूत करने में सरदार पटेल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिनके मार्गदर्शन में देश को एक करने का, देश की सारी रियासतों को, विरासतों को एकजुट में बात करके देश के स्वाधीनता को और मजबूत करने में जिनका योगदान रहा है, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर पूरे देश में अपनी यात्राएं चल रही हैं और तिरंगा यात्रा के साथ साथ सारे लोग इसमें शामिल हैं। सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी राज्यों की सरकारों में इसने भागीदारी की, आम जनमानस भागीदारी कर रहे हैं। प्रत्येक विधानसभा से लेकर लोकसभा तक ये यात्राएं हो रही हैं।
हरिद्वार में जिला प्रशासन ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन ने सीएससी सेंटरों की निगरानी तेज कर दी है और इसी क्रम में एक संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की संस्तुति की गई है। उपजिलाधिकारी हरिद्वार जितेंद्र कुमार ने बताया कि तहसीलदार की जांच में एक सीएससी केंद्र संचालक द्वारा फर्जी खतौनी लगाकर अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी कराने का मामला सामने आया। जांच में पाया गया कि ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड की गई खतौनी वास्तविक अभिलेखों से मेल नहीं खाती थी। उपजिलाधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर पिछले 5 वर्षों में जारी प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है, साथ ही वर्तमान में जारी हो रहे सभी प्रमाण पत्रों की भी गहन जांच होगी। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्रमाण पत्र जारी करने वाले किसी भी सीएससी संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में हाल ही में मानव भालू संघर्ष की घटनाएं बढ़ने पर सरकार सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भालू के हमलों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद वन मंत्री सुबोध उनियाल ने वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्थिति पर विस्तृत चर्चा की। वन मंत्री ने कहा कि जनता की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक रिपोर्ट।
मानव भालू और मानव गुलदार संघर्ष से जुड़े हालिया मामलों पर गंभीरता दिखाते हुए प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण ने प्रभावित क्षेत्रों के सभी प्रभागीय वनाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मानव वन्य जीव संघर्ष के समाधान के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी ली गई और इस समस्या का सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समाधान करने के निर्देश दिए गए। बैठक में प्रमुख वन संरक्षक ने अधिकारियों से कहा कि मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रभाग स्तर पर जन जागरूकता कार्यक्रम चलाकर लोगों को भालू और गुलदार के बचाव से जुड़ी जानकारी दी जाए, साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने और कैमरा ट्रैप, ड्रोन आदि उपकरणों का अधिक उपयोग करने को कहा गया, ताकि वन्य जीवों की आवाजाही पर नजर रखी जा सके। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से अमित सुंदरियाल।
देहरादून में आयोजित प्रशासनिक अधिकारी सम्मेलन 2025 का दूसरा दिन मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इस दौरान कई जिलाधिकारियों ने अपने जिलों की बेहतर पहलों पर प्रस्तुतिकरण दिए, जिन पर अधिकारियों ने विस्तृत चर्चा की। अल्मोड़ा की जिलाधिकारी ने खेल स्वास्थ्य और वेलनेस पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं देने और नई प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए खेल एवं सामुदायिक फिटनेस क्षेत्र बनाया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 100 बच्चों को मुफ्त कोचिंग और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पौड़ी की जिलाधिकारी ने पिरुल और इन्वेसिव बायोमास पर आधारित आजीविका मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पिरुल से बायोमास तैयार कर रही हैं, जिससे उन्हें नियमित आय मिल रही है और वनाग्नि व जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिल रही है। इसमें 280 महिलाएं शामिल हैं। वहीं नैनीताल की जिलाधिकारी ने शहरी बुनियादी ढांचे और मोबिलिटी पर प्रस्तुतिकरण दिया और शहर के लिए सतत विकास का रोडमैप रखा। मुख्य सचिव ने सभी नगर निकायों को इसी तरह का रोडमैप बनाने के निर्देश दिए। बैठक में देहरादून के जिलाधिकारी ने बाल भिक्षावृत्ति रोकथाम पर जानकारी दी। शहर में ऐसे बच्चों के लिए एक केंद्र बनाया गया है, जहां उन्हें पढ़ाई, खेल और कौशल विकास जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं, ताकि उन्हें भिक्षावृत्ति से बाहर लाया जा सके। नगर आयुक्त ने भी शहरों की समस्याओं के समाधान के लिए तैयार किए गए मॉडल का प्रस्तुतिकरण दिया। टिहरी गढ़वाल की जिलाधिकारी ने युवाओं के लिए स्वरोजगार और कौशल विकास पर किए जा रहे कामों की जानकारी दी। उन्होंने कैप्सूल कोर्स, मोबिलिटी सपोर्ट, करियर हब और फ्लेक्सिबल स्किलिंग पाथवे का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। वहीं उत्तरकाशी के जिलाधिकारी ने धराली आपदा में हुई क्षति और भविष्य में रोकथाम के प्रयासों पर प्रस्तुतिकरण दिया, साथ ही पारिस्थितिकी और आजीविका पर आधारित प्रोजेक्ट की जानकारी दी, जिसकी सराहना की गई। मुख्य सचिव ने खेल, हरित आजीविका और युवाओं के सशक्तिकरण से जुड़े अभिनव मॉडल की प्रशंसा की और अधिकारियों को बेस्ट प्रैक्टिसेस को आगे बढ़ाने तथा भविष्य की योजनाओं को विकसित उत्तराखंड 2047 के लक्ष्य से जोड़ने के निर्देश दिए। अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। देश में नई श्रम संहिताएं लागू करने की खबर आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खियों में है। हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है, न्यूनतम वेतन की गारंटी लागू, केंद्र सरकार ने नए श्रम कानून अधिसूचित किए, 40 करोड़ कर्मचारियों को लाभ। इसी खबर पर दैनिक जागरण समाचार पत्र की सुर्खी है, महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन, फिक्स टर्म कर्मियों को एक वर्ष नौकरी के बाद ग्रेच्युटी। देहरादून में चल रहे प्रशासनिक अधिकारी सम्मेलन की खबर पर अमर उजाला ने मुख्य सचिव आनंद वर्धन के निर्देशों को अपनी सुर्खी बनाया है। समाचार पत्र लिखता है, जिलों में सर्वोत्तम पहल राज्यभर में लागू की जाए, भालू के मामलों पर सीएम के त्वरित कार्रवाई के निर्देश, दैनिक जागरण की सुर्खी है। समाचार पत्र के अनुसार मानव वन्यजीव संघर्ष न्यूनीकरण के लिए उपकरणों की खरीद हेतु वन प्रभागों को 50 लाख रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, बेहतर वेतन, जन सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के वादे के साथ देश में नई श्रम संहिताएं लागू। राज्य सरकार ने 15 वर्ष पुराने कॉमर्शियल वाहनों की फिटनेस शुल्क बढ़ोतरी को एक वर्ष के लिए स्थगित किया। राज्य के विभिन्न हिस्सों में मानव भालू संघर्ष की घटनाएं बढ़ने पर सरकार सतर्क। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भालू के हमलों पर तत्काल कार्रवाई के दिए निर्देश। और देहरादून में आयोजित प्रशासनिक अधिकारी सम्मेलन 2025 के दूसरे दिन अल्मोड़ा, पौड़ी, नैनीताल, देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी के जिलाधिकारियों ने अपने जिलों की बेहतर पहलों पर प्रस्तुतिकरण दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।